जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारी जमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारी जमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारी जमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय वंशपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेशल अभय चरणारविंद भक्तिविदान स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय इस कॉन बिविटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय वंशपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेशल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज में वृंदावन धाम की जय नदी मयपुर धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समावेत भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ग्लोरियस टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भागवतम का आठवां स्कंध है आठवां अध्याय है श्लोक संख्या दो क्षीर सागर का जो मंथन हो रहा है अभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि समुद्र मंथन में मुख्य मुख्य व्यक्तित्व जो चरित्र लेकर आता है इनकी उत्पत्ति हो रही है। जब क्षीर समुद्र में सर्वप्रथम हलाहल पैदा हुआ तब समुद्र मंथन का कोई मतलब नहीं रहता और यदि उसे हटाया न जाए तो सारी चीज भी दूषित हो सकती है लेकिन ये दूषण को दूर करने वाला शिव जी के अलावा दूसरा कोई किसी के ख्याल में आता भी नहीं। यदि राक्षस लोग जाते हैं शिव जी के पास याचना करते हैं तो शिव जी शायद प्रसन्न न होते हैं लेकिन देवताओं लोग गए हैं क्योंकि देवताओं भगवान शिव की अमान्य रखते हैं वफादार हैं तो उन्होंने विनंती की और शिव जी राजी हो गए हलाहल पी लिए। सारे जगत का उद्धार करने के लिए हलाहल पिया। अभी जब हलाहल दूर हो गया तो समुद्र मंथन में जो जो भगवान के ऐश्वर्य की उत्पत्ति होगी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदग्रे विषमीवत परिणामे अमृतोपम यदि शुरू शुरू में हमें यदि कोई भी कार्य की प्रवृत्ति में फल जो मिलता है यदि विषमीव विष जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम अमृतमय होता है। ये कैसे समझोगे? यतदग्रे विषमेव परिणामे अमृतम्। शक्ति का व्यय होता है, व्यय नेगेटिव साइड कहलाती है, कुछ फायदा तो होता नहीं, व्यय होता है। हर एक बाबत में ऐसा नहीं है कि जो न्यूटन का लॉ है कि जितनी गति से आप अपनी शक्ति का व्यय करोगे उतनी ही गति के अनुसार आपको उसका परिणाम मिलेगा। नहीं, भगवान की रचना इतनी सीधी साधी नहीं है। किसी भी कार्य के लिए पांच विषय आवश्यक होता है। कोई भी कार्य की फलश्रुति के लिए पांच कारण बताए, एक नहीं। तो न्यूटन का लॉ तो एक ही कारण बताता है, तो वो ठीक नहीं। पांच कारण समझने में कोई जटिलता नहीं, लेकिन ये सारी सृष्टि भगवान द्वारा, भगवान की शक्ति द्वारा पैदा हुई है, तो उसमें जो नियम स्थापित किए गए हैं उसमें पांच कारण बताए। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम दैवम पंचात, पांचवा दैव है। अधिष्ठानम यानी कि कार्य क्षेत्र, ये शरीर अधिष्ठान कहलाता है, जिसके माध्यम द्वारा हम शरीर की पोषण रक्षा इत्यादि सब के लिए कार्य करते हैं, तो ये अधिष्ठान बन गया हमारा। तथा कर्ता, कर्ता हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, पर वो तो मिथ्याचार है। अहंकारम विमूढात्मा कर्तारम इति मन्यते, ये तो प्रकृति गृहमाणानी है, प्रकृति द्वारा सारा संभव है। तो इसी तरह अलग अलग प्रकार की चेष्टा तीसरा कारण बता। किसी कोई कार्य में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है और फल ज्यादा मिलता है, और बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी कम मिलता है। तो समाज में जब शूद्र लोग परिचर्यात्मकम कार्य करते हैं तो इन लोगों को बेचारों को इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। और घरे बैठे बैठे व्हाट्सएप पर सट्टाबाजी रमने वाले खेलने वाले आराम से कमाते रहते हैं। पृथक चेष्टा, अलग अलग प्रकार की चेष्टा। दैवम सुपरविजन, भगवान का सुपरविजन पांचवा कारण बताते। तो इसी तरह भगवान की सृष्टि में भगवान की ही शक्ति का जो प्राधान्य सारे संचालन का माध्यम बनती है, तो वो शक्ति किस तरह वो सीधी सादी हो सकती है। बहुत सारे राक्षस लोग भगवान की शक्ति किसी न किसी ढंग से आसानी से वो हड़पना चाहते थे। आध्यात्मिक शक्ति सीता को तो कोई छू ही नहीं सकता। कितनी मेहनत करनी पड़ी है रावण को, उसे समझ में आता है कि सर्वप्रथम वो आनंद के लिए काम करता है, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए सीता को भी उठा लेता है, लेकिन परिणाम है विषमीव। परिणाम तो उसका विषम ही हुआ। तो ये सिद्धांत पहले से स्थपा है, तो अभी समुद्र मंथन में भी वही सिद्धांत के अनुसार पहले विष निकला, पर यतदग्र विषम ही वह परिणाम है अमृतोपम। अभी देखो अमृत की प्राप्ति के लिए कौन कौन से अन्य ऐश्वर्य प्रकट होते हैं, तो आज के अध्याय में हम समझेंगे। ताम अग्निहोत्रीम ऋषयः जगृहु ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मिथ्याय हविषे नृप। तामग्निहोत्रिम् ऋषयो जगृहु ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप। तामग्निहोत्रिम् ऋषयो जगृहु ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप। तामग्निहोत्रिम् ऋषयो जगृहु ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप। उस गाय को अग्निहोत्रिम अग्नि में आहुति के लिए मट्ठा दूध तथा घी प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऋषयः यज्ञ करने वाले ऋषियों ने जगृहु बार संभाला, ब्रह्मवादिनः वैदिक अनुष्ठानों को जानने वाले, यज्ञस्य यज्ञ का, देवयानस्य स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक जाने की इच्छा को पूरी करने वाला, मेध्याय आहुति डालने के लिए योग्य, हविषे घी के लिए नृप, हे राजा। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमदेशी भक्ति विद्वान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों के पूर्ण जानकार ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक पदार्थ अर्थात मट्ठा दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए भी ऐसा किया क्योंकि उन्हें उच्च लोक में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता होती है। सुरभि गायें सामान्यतः वैकुंठ लोकों में पाई जाती हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने लोक गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय पालन में व्यस्त रहते हैं। सुरभि रवि पालयंतम, ये गायें भगवान की पालतू गायें हैं। सुरभि गायों से चाहे कोई कितना ही दूध निकाल सकता है और जितनी बार चाहे उन्हें दू सकता है। दूसरे शब्दों में सुरभि गाय असीम मात्रा में दूध दे सकती है। यज्ञ संपन्न करने के लिए दूध आवश्यक है। मुनिगण जानते हैं कि मानव समाज के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए दूध का प्रयोग किस तरह किया जाए। क्योंकि शास्त्रों में सर्वत्र गोरक्षा की संस्तुति की गई है, अतएव ब्रह्मवादियों ने सुरभि गाय का भार संभाला क्योंकि असुरों की उसमें अधिक रुचि नहीं थी। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिवजी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फल स्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई और यही गाय को याज्ञिक ऋषियों ने संभाला। ब्रह्मलोक में सनातन गोस्वामी के अनुसार हमेशा यज्ञ प्रधान है और यज्ञ में जो आहुति दी जाती है तो सारे संसार के सामूहिक कर्मों का फल जो होता है वो धीरे धीरे ब्रह्मा की पास ब्रह्मलोक में ही जाता है। कोई किसी पर बोझा नहीं रहता, ब्रह्मलोक में जाता है और ब्रह्मा जी विराट स्वरूप जो विराट पुरुष है उनकी सेवा में लगे रहते हैं। सृष्टि की शुरुआत में ये विराट पुरुष हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। वो गर्भोदक्षाय विष्णु का आविर्भाव है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने गर्भोदक्षाय विष्णु ने अपना दाहिना पांव उठाकर बताया कि शरणागत हो। लेकिन शरणागति में भी तो समुचित कार्यवाही होनी चाहिए, तो क्या करें? ये ब्रह्मलोक है जहां ब्रह्मा जी के अनुसार चलने वाले बड़े बड़े तपस्वी लोग जो ब्रह्मवादी न कहलाते हैं वो भी वहां रहते हैं, ब्रह्मलोक में जाने वाले भी। तो सारे संसार का सारा फल श्रुति स्वरूप यदि पाप कर्म है या पुण्य कर्म है सभी ब्रह्मा के पास जाता है और ब्रह्मा जी आहुति देते हैं वहां हर रोज और विराट रूप को अर्पित करते हैं। इसी तरह ये भौतिक दुनिया की भौतिक संसार की समग्र कार्यवाहियों का जो परिणाम है वो भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए हम अपने कर्मों किए के बंधन से छूट नहीं सकते, वो तो हमने अनजाने में भी प्राप्त होता है, लेकिन जो जानकार है तो ये सारी जो भगवान ने सृष्टि की रचना की उसमें ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी तक सारे लोग मध्य अवस्था में बता, वो त्रिलोक कहलाते हैं। त्रिलोक में पृथ्वी से ऊपर और पृथ्वी के नीचे, इसी तरह 14 भुवन आते हैं कुल मिलाकर। तो जो स्वर्गलोक की ओर जाने वाले हैं तो वो सारे 6 लोग 7 लोग बताए हैं, जिसमें पितृलोक भी आ जाता है। और वहां तक सबके कार्य के फलश्रुति भगवान को सीधी पहुंचती ही नहीं, पहुंचती है तो वो ब्रह्मलोक तक पहुंचानी पड़ेगी और ब्रह्मा जी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि सारी सृष्टि का पैदा करना, प्रजापति बनना, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए 3 गुणों का समावेश के अनुसार उनका स्वभाव चरित्र और कार्यवाही भी बना देता है। लेकिन ब्रह्मा के लिए भी यज्ञ विधि तो शास्त्र के बताए हुए ही होती है, वो मनमानी यज्ञ विधि नहीं कर सकते। ब्रह्मार्पणम हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवत गीता में सब कुछ ब्रह्म से पैदा हुआ है, वो ब्रह्म को अर्पण करना ब्रह्मा की अंतिम जिम्मेदारी है। जो भक्त हैं वो अपने कार्य को भगवान को सीधा अर्पण करते हैं, टेढ़ा नहीं, यहां दे दो चल जाएगा, दुर्गा जी को दे दो चल जाएगा, नहीं। वो तो काम स्थिति हत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आष्ठाय माया ते विहिता स्वया। भगवान अपने अपने बनाए हुए नियम में हमारी आस्था बना देते हैं, पर लेकिन कामनाओं से जिसका हरतक ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान चुरा जाता है, किसको अर्पण करना जानते नहीं और देवताओं के थ्रू जाते हैं। ये चाप्यन्य देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव यजन्ते अविधि पूर्वकम्। चाहे देवताओं पर कितनी श्रद्धा रखो आप, पर उनको अर्पित किया हुआ भगवान को अर्पित करने की जहां आवश्यकता थी तो देवताओं को जाता है, तो भगवान को सीधे ढंग से प्राप्त कराने की आवश्यकता होती है तो ये वाया वाया क्यों जावे, इसलिए अविधि पूर्वकम करा है। हाँ? तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हमेशा यज्ञ विधियों में रत रहते हैं, कभी इनकी जिम्मेदारी अन्य लोकों पर भी है, पर यहां वैकुंठ लोक की भी बात आई है। हाँ? समुद्र मंथन है तो क्षीर सागर का समुद्र मंथन हो रहा है और उसमें सुरभि निकली, पर ये सुरभि तो गोलोक वृंदावन की है। गोलोक यानी गैयाओं का लोक, जहां कृष्ण भगवान रहते हैं, एक गैया को सेपरेट लोक मिल गया रहने का, और हमें परेशानी आती है, गैयाओं के लिए हम बहुत कम कुछ कर पाते हैं। भगवान स्वयं सुरभि अभिपालयंतम करते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहां भौतिक दुनिया में डोग अभिपालयंतम होता है, कुत्तेओं का अभिपालयंतम करते हैं, देखो कितना फर्क है। तो क्या कर्मों का जो फल है वो भगवान को समर्पित करने में कितनी एक तो हमारी इच्छा ही नहीं दिखाई देती। जहां गैया का महत्व भी नहीं समझ पाते, कत्ल खाने खोल दिए, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग भी दूषित हो गया। कलयुग में सर्वप्रथम दूषित होता है तो ब्राह्मण वर्ग दूषित होता है। श्रृंगी की खोपड़ी में परीक्षित राजा के प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ उसे सीख मिलती है कि देखो ये ब्राह्मण लोग भी अभिमान से चकनाचूर हो जाते हैं। कलयुग की शुरुआत होती है श्रृंगी अपने मित्रों के साथ अपने जो ब्राह्मण का जो दावा होता है, उनका स्थान होता है, उनकी बड़ाई करते करते मस्ती मजाक करता है, और उसके पिता शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप देखकर इसका जो गर्व है उसको चुनौती मिल जाती है। ऐसा जानबूझकर यदि कोई काम करता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो उसकी बुद्धि में भी कली घुस गया, और सहन करने के बजाय उसने श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को। सांप तो बहाना है, लेकिन परीक्षित महाराज भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। भक्ति में जो तप का फल तो अनायास ही प्राप्त होता है, उन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए हैं जिनके लिए इनको कुछ कोसना पड़े। जो कुछ हुआ है भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ है। कलयुग भी भगवान का ही तो एजेंट है, लेकिन परीक्षित महाराज जानते हैं इसलिए उसको आश्रय देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि देखो कली परीक्षित महाराज के मुकुट जो सोने का था उसमें भी घुस गया, नहीं। परीक्षित महाराज विशुद्ध भक्त हैं, काल की गति को जानते हैं, और वो भी अनायास ही भगवान के इशारे पर ही हमेशा जीते हैं। उसमें ही तो फायदा है। परीक्षित महाराज को ये श्राप की बात जब पता चला तो उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी तो शायद ये श्रृंगी का श्राप को नष्ट कर सकते थे, पर उन्होंने सोचा नहीं। भगवान अंतिम संचालन करते हैं, तो इनके संचालन में हम दखलगिरी ना करें। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन जो आवश्यक थे वो तपश्चर्या, दान धर्म और यज्ञ विधि, ये तीनों समापन करने के लिए उन्होंने ठान लिया, अपने आप को निवृत्त कर दिया, गंगा के किनारे बैठ गए। इनको पता नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी आने वाले हैं, लेकिन सारा उद्देश्य जो भगवान की ये सारी व्यवस्था के जानकार होते, वो सारी चीज स्वीकारते, डरते नहीं। उन्होंने फरियाद भी नहीं की कि देखो मैं कितना अच्छा राजा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, जन हमें कुछ थोड़ा लंबा समय दे दो। चाहते तो वो काउंटर एक्ट कर सकते थे, पर नहीं किया। आजकल कलयुग में चाहे कितने बेवफा लोग सरकार चलाते हैं, अपने लिए परदेश में धन इकट्ठा करते हैं, ये शोषण कहां किसका, तो गरीबों का है। उन्होंने सोचा गरीबों का ये जो सारा पैसा इत्यादि है वो सुरभि की तरह बहुत विपुल मात्रा में मिलता है, लेकिन स्वार्थ के लिए। यहां ऋषि मुनिया सुरभि को इसलिए स्वीकारते हैं कि ये भूमि धरातल पर भी ये यज्ञ विधि चालू रहे, यज्ञ विधि चालू रहे। कलयुग में यज्ञ न होते हुए भी ये जो सारा कार्यक्रम है जो भगवान के द्वारा निश्चित हुआ है, तो सुरभि का महत्व बहुत बड़ा है। काम दुग्धा, काम यानी अपनी सारी इच्छाएं को पूर्ण करने के लिए दूध निकलता है। दूध में से जो बनता है, अंग्रेजी में तो दूध को लिक्विड रिलीजियोसिटी बोलते हैं, प्रवाही धार्मिकता, लिक्विड रिलीजियोसिटी। लेकिन इसका उद्देश्य भगवान को सारी दूध, दूध का पदार्थ इत्यादि सब कुछ समर्पण करने के लिए है, भगवान के प्रति के लिए, यज्ञ की विधि के लिए है। पर लेकिन कलयुग में श्रृंगी के श्राप के बाद कलयुग ने ब्राह्मणों की खोपड़ी में ही दूषण ऐसा डाल दिया कि यज्ञ विधि ये कलयुग का धर्म न होने के बावजूद भी यज्ञ विधि चालू रखने और उसमें गोवध, अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े का वध भी कराया जाता। जो हेतु यज्ञ की विधि में जीव का उद्धार करने के लिए जब होता था, कल ही हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा था हिंदी भगवद गीता के क्लास में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब यज्ञों में आहुति दी जाती थी, किसी का गला काट के नहीं करती, लेकिन गला को मरोड़ देते थे, स्ट्रैंगुलेशन जिसे कहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं स्ट्रैंगुलेशन कोई हथियार से नहीं, बल हाथों से। ब्राह्मण लोग भी इसी तरह यज्ञ विधि का पालन करते थे, लेकिन उनका हेतु अलग था, इंद्रिय तृप्ति। काम यानी विषय वासना और जो शरीर के पोषण के लिए जो आवश्यक तत्व प्रदान करना और उसकी इच्छा रखना, वो यज्ञ से आसानी से संपादित हो जाती है। विषय वासना को बहकाने के लिए ये सब उपाय करते हैं, बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस, कत्ल खाने इत्यादि, उसका तो कोई शास्त्र में उल्लेख है ही नहीं। तो जो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यानी कि इकोनॉमी, कुदरती इकोनॉमी है, गौ रक्षा से प्राप्त होती है, यहां गौ की कत्ल से होती है। कलयुग में गौ की कत्ल से होती है, सारा संसार कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, तो गौ रक्षा अंत में रही सही बना देते, कानून बनाते हैं, लेकिन गोवध चालू रहता है। हमें पता है कि एक बार गुजरात में गोवध बंद करने के लिए सरकार ने अनाउंस कर दिया, चिमन भाई पटेल ने, वो वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने कहा हमने तो कानून बना दिया, अब गोरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। गोरक्षा आप करो, वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यानी के मूर्ख बनाने का धंधा। पर कहने का मतलब है ये सारी विषमता दिमाग में कैसे आई? दूषित कर्म द्वारा दूषित चेतना बनती है, चेतना दूषित हो जाती है। हम भी ये चार नियमों का पालन इसीलिए करते हैं कि वो दूषित चेतना को शुद्ध बनावे। जिन जिन पदार्थों का महत्व है उसको भगवान की आहुति में जाना चाहिए। ये दूध और दूध का पदार्थ जो है सारे भगवान को सीधे आहुति में उपयोग किया जाता है, वो कोई वाया वाया नहीं है। राक्षस लोग घी के बजाय गैया की चर्बी निकाल करके आहुति करते होंगे। अलाहाबाद में हम राधा वेणी माधव की स्थापना कर रहे थे, उस समय प्रसंग है, तो भद्रचारु जयपता का महाराज का डिसाइपल है, वो मायापुर से आया, यज्ञ कराने लगा, घी से जलाने का प्रयत्न किया, घी जलता नहीं, लकड़ी भी जलती नहीं है, धुआं भी नहीं निकलता। मैं बगल में ही बैठा था, भद्रचार्य क्या बात है, महाराज जी आप जानते हो एक गाय की चर्बी बेचते थे घी के रूप में और जलती ही नहीं। ये हालत है। तो कैसे है कि जब सांप चलता है धूली में तो अपनी चलने की जो सारी छाप है वो छोड़ देता है, तो ऐसे पता चलता है कि यहां से सांप गया। अभी तो वो भी मिट गया, दिखता ही नहीं, सांप भी चालाकी से जमीन के अंदर से जा रहा है, जहां धूली है ऊपर से पता नहीं चलता। सूखी जमीन है तो उसे जमीन पर जाना होता है, पर जहां धूली है ये ब्रजवासी जो परिक्रमा करते हैं तो जानबूझकर धूली डालते हैं कि पांव में इतना दर्द ना हो। हाँ, लेकिन सांप धूली के नीचे जाता है, पता ही नहीं चलेगा कि नीचे सांप है, हम कहां चल रहे हैं। हाँ, इसलिए सांप गया है उसकी निशानी भी नहीं रहती। तो इसी तरह ये संसार जो परिवर्तनशील है, बहता जा रहा है, तो उसमें ये सारे संस्कार भी अलोप हो जाते हैं, नाम मात्र भी नहीं। तो ये सारी जो बातें हैं, जिस हेतु के लिए समुद्र मंथन से निकली हैं और भगवान के सीधे अर्पित हो सारी चीजें, इनसे विविध प्रकार की भावनाओं के लिए, जैसे आहुति में, अंतिम आहुति में खीर चढ़ाते हैं, लेकिन घी तो हवि है, हवि। भगवान जब भगवत गीता में कहते हैं कि हवि ब्रह्माग्नो, हवि ब्रह्म की अग्नि, तो ये हवि भी ब्रह्म बन जाएगा, घी भी ब्रह्म का रूपांतर है। तो ये कोई मान्यता का विषय नहीं है, लेकिन समझदारी का विषय है। ब्रह्मार्पणम हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सारा कर्म ब्रह्ममय बनाया जाए तो ये सारी प्रक्रिया में जो चलने वाले इनका दिमाग समाधि में पहुंचता है। सम सब एक प्रकार की समता, अन्य अन्य जो क्रमों के अनुसार जो विकास हो रहा है कि पहले दूध बाद में दही और उसमें से भी मलाई निकालकर बाद में मक्खन बनाओ और उसको भी गरम करके घी बनाओ। हाँ, तो ये सारा जो रूपांतर है वो प्रक्रिया में एक एक स्टेज में ब्रह्म की उपस्थिति समझनी होती है। ब्रह्म यानी के आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों का संचय, उसे ब्रह्म कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, आध्यात्मिक सगुणता, भौतिक निर्गुणता, तो दोनों का हमें सम्मिलन करना है। ऐसे नहीं कि हम एक ही पक्षी हैं, नहीं, सर तीनों पक्ष में भक्ति का क्रम आगे निकल, जैसे कि तपश्चर्या के अंत में भक्ति फल स्वरूप मिलती है, वो सतयुग में है। यज्ञ कर्म में सारी जिंदगी का फल स्वरूप बाद में भक्ति में होता है। इसी तरह दान जो परिचर्यात्मकम, द्वापरे परिचर्यायाम, तो परिचर्या यानी कि भगवान की सेवा पूजा इत्यादि में जो सारा तत्व छुपाया है वो ब्रह्म का है। इसलिए अंत में भगवान का नाम और भगवान की भक्ति सिद्ध होती है, पहले नहीं। कलयुग में सीधे ही हरि नाम बोलते भक्ति सिद्ध हो जाती है, क्योंकि भगवान के नाम में ब्रह्म की शक्ति भी तो है, जो गोलोक वृंदावन से आई है। सो इसी तरह ये समुद्र मंथन में जो जो चीजें निकली हैं भगवान की सेवा के लिए निकली है, भगवान की सेवा के लिए निकली है। उसी तरह मनुष्य जीवन अपना जीवन संचालन करे, ये स्पष्ट निर्देश है। ये वैदिक अनुष्ठानों के पूर्ण जानकार ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक पदार्थ था, मट्ठा दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा ही किया क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता होती है। ब्रह्मा जी भी घी कौन सा घी उपयोग करते हैं पूछो जरा, अमूल का या पतंजलि का? सब उल्टा पुल्टा होता है। कलयुग में शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? अपनी गाय की सेवा करने से ही मिलेगा, नहीं तो किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। गृहस्थों को इसलिए कहा कि घर में सुरभि रखो, कुकुर मत रखो, सेवा ही करना है तो गैया को करो। तो जिनकी जो जिम्मेदारी है इसी तरह बहुत कुदरत यानी कि बहुत प्रामाणिक रूप से कृत्रिम रूप नहीं अपनाते, प्रामाणिक रूप से वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो समुद्र मंथन कोई मामूली चीज थोड़ा पैदा करता है। लेकिन सबका हेतु भगवान ने जो पैदा किया तो भगवान की सेवा के लिए है, ठीक? किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जरा भैया दे दे।
हरे कृष्णा।
जय।
अभी महाराज ने बताया है ब्राह्मण लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं, शास्त्र में भी ये बताया है, तो फिर ये ब्राह्मण को प्रभुपाद जी ने दीक्षा दे रहे के ब्राह्मण बना रहा है, इसमें हम लोग क्या समझेगा?
ब्राह्मण के लिए लायकात नहीं है, लेकिन भगवान भगवान ने प्रभुपाद जी को इतने पवित्र स्थान दिया है कि वो चाहते हैं कि मैं ब्राह्मण बनाऊं आपको, आप में कोई लायकात नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी में लायकात है। तो प्रभुपाद जी पर भरोसा रखोगे, इनको वफादार रहोगे, इनका कहा करोगे? हाँ, इनकी खुशी कहाँ है वो समझने में ही हमारा योगदान होता है। हमारे में कोई लायकात नहीं ब्राह्मण बनने की। प्रभुपाद जी ने ये कहा जब भक्तों की प्रथम दीक्षा हो गई, उन्होंने कहा आप जानते नहीं मैं यहां क्या कर रहा हूं, आई एम मेकिंग ऑल ऑफ यू ब्राह्मण। जबकि वही संदर्भ के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद जी के दो वरिष्ठ गुरु भाइयों को, एक को लंदन और दूसरे को बर्लिन भेजा था, यही प्रश्न आया था कि परदेश में ये लोग ब्राह्मण का महत्व जानते थे, लोग अपने आप को जैसी स्थिति में है उसमें ही ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की भावना रखते थे। तो उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण बना दो। तो गुरु भाई सोच में लग गए हैं, कि भैया ये लोग तो ना तो मांस छोड़ने वाले हैं ना कुछ नहीं, इनको ब्राह्मण कैसे बनाया सर? इट्स इम्पॉसिबल। और ज्यादातर वो प्रचार नहीं कर पाए। तब गुस्से में आकर कहा ये लोग मांस नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो मांस भगवान को भोग लगा के इनको खिलाओ, लेकिन सुधारो। ताकत है, सब डर गए कि भैया ये तो बहुत मुश्किल भरा काम है। प्रभुपाद जी मांस भगवान को अर्पण करने की भावना नहीं रखते, लेकिन ये विषय ऐसा है कि वो ज्यादा जड़ बुद्धि वाले समझना ही नहीं चाहते। तो प्रचार का अर्थ क्या हुआ? जब प्रभुपाद जी ने बहुत आसानी से मांस भी छुड़वाया, कैसे छुड़वाया? पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मांस छोड़ दिया, क्योंकि उसमें भी जो दूध का मूल तत्व है वो बना रहता है। यहां आजकल दूध में से कोई गुलाब जामुन नहीं बनाता, यहां तो सिर्फ आटा बना रहता है। पहले दूध में से पनीर फाड़कर गुलाब जामुन और रसगुल्ला बनाते थे। पहले तो घी में ही प्रभुपाद जी ने कहा कि कितना इम्पोर्टेंट, घी का ही अनुग्रह किया है बराबर, क्योंकि आप ये तेल तो थर्ड क्लास होता है और सबसे सस्ता और कोई भी मूल्य नहीं ऐसा जो तेल है वो कौन सा है? पाम ऑलिव। सस्ता सस्ता माल, और सिद्धपुर की यात्रा करने जा रहे हैं, कितना विरोधाभास है। कोई और है प्रश्न? श्री प्रभुपाद की जय।